मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं कल के ही विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा जो खुशी का सूचकांक इससे संबंधित है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करने जा रहा हूं। अनुरोध कुल मिलाकर यह है कि आप देख रहे हैं कि जो प्री एग्जामिनेशन है धीरे धीरे रेंगते रेंगते अब काफी कुछ आपके करीब आ चुका है। लगभग 2 महीने के बाद प्री एग्जामिनेशन आप दे रहे होंगे। इस स्थिति को देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि अब मैं प्री एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन या उससे संबंधित और भी जो दूसरी बातें होंगी उन पर आप सबसे डिस्कशन करूं, राइट? लेकिन मेरा यह जो डिस्कशन है वह तब सार्थक हो सकेगा व्यावहारिक दृष्टि से जब आप इसमें जीवंत भागीदारी निभाएंगे। जीवंत भागीदारी कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि मैं बस बताता रहूं, बोलता रहूं और आप सुनते रहें। मैं चाहूंगा कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। आपका पार्टिसिपेशन किस रूप में हो सकता है? 2 रूपों में। पहला तो यह कि प्लीज आप मुझे बताएं कि प्री एग्जामिनेशन में किन किन बिंदुओं पर बात किए जाने की जरूरत आप महसूस करते हैं। डेफिनेटली जो आप मुझे विषय देंगे वो आपकी अपनी जरूरत होगी, लेकिन मान करके चलिए कि यह सप्ताह इसके लिए है, नेक्स्ट वीक से फिर मैं प्री एग्जामिनेशन पर भी बात करनी शुरू करूंगा, तो इस सप्ताह तक आप मुझे विषय सुझा दें। दूसरी बात कि जब मैं किसी विषय पर बात करूं तो उसमें भी आपकी भागीदारी होनी चाहिए। आप उसके प्रति सहमति व्यक्त करें, उसके प्रति असहमति व्यक्त करें, अपनी तरफ से कुछ थॉट्स दें कि मैं उन्हें दूसरों तक भी पहुंचा सकूं, यानी कि डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। मैं ये 2 तरह की भागीदारी आपसे चाहता हूं, तो प्लीज अनुरोध है कि आप सब सबसे पहले तो विषय मुझे लिखकर भेजें कि प्री एग्जामिनेशन के बारे में इस टॉपिक पर बात की जानी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं मुख्य विषय पर आऊं, जो कुछ दूसरी खबरें हैं आइए उन्हें देख लेते हैं। मैं आज आपको 2 आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं और ये संयोग की बात है कि दोनों बिजनेस स्टैंडर्ड से हैं, और ये भी संयोग की बात है कि दोनों का विषय भी लगभग एक ही है और वो है हमारे देश के शहर नगरों का विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस की दृष्टि से भी और प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी। ऑनलाइन लेक्चर्स के तहत इस पर इंडिपेंडेंटली बहुत ही विस्तार के साथ लेक्चर आपको प्रोवाइड किया गया है। ये उसका एडिशन है, और जो हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट नहीं है उनसे भी मेरी यह रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ें और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं प्लीज आप उन्हें नोट करके अपने नोट्स को या अपने लेक्चर को अपडेटेड कर लें। ये दोनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। दोस्तों, अखबारों में आज आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से इसराइल में एक तरीके से जन आंदोलन सा उठ खड़ा हुआ है। ये जन आंदोलन किस बात को लेकर के है, इससे कुछ दिनों पहले मैंने इस पर चर्चा की थी, क्योंकि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक ऐसा कानून पारित किया है जिससे जो वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है, कह लीजिए सो कॉल्ड जो सुप्रीम कोर्ट है, जो अपेक्स कोर्ट जिसे आप कहेंगे, वो कमजोर हो जाए। कमजोर हो जाए इस मायने में कि जो न्यायाधीशों का चयन होगा उसके लिए जो समिति होगी उस समिति में सरकार भी होगी। कुल मिलाकर के ये कि उसका स्वरूप कुछ इस तरीके का होगा कि न्यायाधीशों का चयन करने वाली जो समिति होगी उस पर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा, यानी कि सरकार ही एक प्रकार से जजों की नियुक्ति करेगी और कोर्ट के किसी भी आदेश को सरकार टालने के में सक्षम हो जाएगी, यानी कि कोर्ट के लिए बहुत कठिन होगा कि वो सरकार पर कोई नियंत्रण रख सके। इसके विरोध में इसराइल में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और आंदोलन अब लगातार व्यापक होता चला जा रहा है, और अब ये जो आंदोलन है केवल युवाओं का ही नहीं है, केवल नागरिकों का ही नहीं है, बल्कि जो दूसरे संगठन है वे भी लगातार इसमें शामिल होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल एक प्रकार से गृह युद्ध जैसी स्थिति आ गई है। ऐसे में ही वहां के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि ठीक है, अभी इस प्रक्रिया को थोड़ा सा रोक देते हैं, अगले सत्र तक के लिए रोक देते हैं ताकि गृह युद्ध को टाला जा सके। देखिए, ये उनके शब्द हैं, ताकि गृह युद्ध को टाला जा सके। इसे एक बात आपको दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से जब आप जुडिशियल पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि जब विधायिका जुडिशरी को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, तो जनता में किस तरह का आक्रोश पैदा हो जाता है। ये एक उदाहरण है इसराइल का। आगे देखते हैं कि क्या होते हैं, लेकिन ये घटना है और पूरे आप यूं कह लीजिए कि वैश्विक स्तर पर इस घटना की चर्चा हो रही है और इसमें कोई दो राय नहीं कि इसराइल में जो ये घटना घटित हो रही है इसका विश्वव्यापी प्रभाव पड़ेगा। विश्वव्यापी प्रभाव का मतलब ये है कि जो हमारी जुडिशरी है उसकी जो इंडिपेंडेंसी है उसकी सुरक्षा में इसका बहुत बड़ा हाथ होगा। दूसरी सरकारें भी फिर जरा सा जुडिशरी के अधिकारों को कम करने से पहले सोचेंगी, रुकेंगी। दोस्तों, आज मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं जो सोशल मीडिया के यूज को लेकर है। ये बहुत ही नया घटनाक्रम है और आपको इसे नोट कर लेना चाहिए। सिलिकॉन वैली, यानी कि जो अब आप देख रहे हैं जितने भी फेसबुक और यूट्यूब और ये क्या 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 दुनिया भर, वो सिलिकॉन वैली की देन है आप कह सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि सिलिकॉन वैली में ही जो स्कूल बोर्ड है उसने ये जो कंपनी है, कौन सी कंपनी, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, इन कंपनियों के नाम आप जानते हैं क्योंकि आप इनका तो इस्तेमाल ही करते हैं, उनके खिलाफ केस दायर किया है। और केस इस बात को लेकर के दायर किया है कि ये जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इन कंटेंट्स के कारण जो स्टूडेंट हैं वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं और उनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, खासकर मेंटल हेल्थ क्राइसिस पैदा हो गई है। सोच के देखिए, ये केस दायर किया गया है। सोशल मीडिया को लेकर के कुछ समय से आप महसूस कर रहे होंगे कि एक प्रकार से अखबारों में काफी विरोध के स्वर आपको सुनाई दे रहे होंगे। पेरेंट्स भी परेशान हैं, बच्चे तो परेशान ही हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद भी परेशान हैं। मतलब एक लत सी लग गई है और ये भयावह लत है, ये कोई छोटी मोटी लत नहीं है। देखते हैं कि अब वहां कोर्ट का क्या फैसला आता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी जो केस है ये बहुत महत्वपूर्ण केस है और इसका जो फैसला आएगा वो बहुत मायने रखेगा दूसरे राष्ट्रों के लिए भी। और व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि नियंत्रण चाहे जैसे भी लगे, चाहे वो सरकार के द्वारा लगाया जाए, चाहे वो पेरेंट्स के द्वारा लगाया जाए, चाहे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लगाया जाए, लगाया तो जाना ही चाहिए क्योंकि जो स्थितियां हैं वो बहुत संवेदनशील हो चुकी हैं, बहुत ही भयावह हो चुकी हैं। और यदि इसे ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया तो स्थितियां बद से बदतर होती जाएंगी। आज मैं आपको एक और एडिटोरियल कमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं और यह कमेंट भी इकोनॉमिक टाइम्स का है, खासकर ऑर्गन डोनेशन को लेकर के, कि शरीर के जो हमारे अंग होते हैं उनको डोनेट करने के मामले में। इकोनॉमिक टाइम्स का ये एडिटोरियल कमेंट है, संभव हुआ तो इसका जो हिंदी वर्जन हो सकता है वो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मैं वायदा नहीं करता लेकिन फिर भी कोशिश होगी। मुझे लगता है कि जो ऑर्गन डोनेशन का जो एडिटोरियल कमेंट है ये इंडिपेंडेंटली ऑर्गन डोनेशन के बारे में तो शायद उतना ज़्यादा मायने न रखता हो, मैं एग्जामिनेशन की दृष्टि से कह रहा हूँ, लेकिन खासकर जो एथिक्स का हिस्सा है आपका, जो फोर्थ पेपर है जनरल स्टडीज का मेन्स में, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ऑर्गन डोनेट करते हैं तो उसका संबंध सेवा भाव से है, त्याग से है। तो इस उदाहरण को आप वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिनों पहले ही पब्लिकली अपील किया है कि लोग ऑर्गन डोनेट करने के लिए सामने आए और ऑर्गन डोनेट करने से संबंधित जो हमारे रूल्स रेगुलेशन हैं उनमें भी थोड़ी ढिलाई दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस दृष्टि से आगे आ सके। दोस्तों, मेरे पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है खुशी के सूचकांक को लेकर के, लेकिन फिर भी चलिए कुछ बातें करते हैं। मैंने आपको एक जो तथ्य दिया था डिस्कशन के लिए, शायद आपने डिस्कशन किया हो, तो क्या हम ये मान करके चलें कि यदि हम अपने देश के राज्यों को छोटा बना दें तो ये जो हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है ये बेहतर हो जाएगा, यानी कि क्या छोटे जो राज्य हैं वो खुशी के सूचकांक को बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान में यहां रखना होगी कि जो खुशी का जो सूचकांक बनाया जाता है उसका एक बहुत बड़ा पैमाना है, जो दो तीन बड़े पैमाने हैं, तीन पैमाने मैं यहां आपको बताना चाहूंगा। एक तो है जीडीपी, कि वहां उस देश की जीडीपी कितनी है, यहां हम राज्य की जीडीपी ले सकते हैं। दूसरा है कि वहां जीवन की गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, और तीसरा जो है वो जीवन प्रत्याशा क्या है, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट उसके मानक है। अब आप देखें कि जब हम इन मानकों को लेकर के चलते हैं तो यहां आपको दिखाई देगा कि ये जो तीनों के तीनों मानक हैं कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मानक हैं, यानी कि धन से जुड़े हुए मानक हैं। भाई जीडीपी तो सीधे सीधे धन से जुड़ा हुआ है, जीवन की जो गुणवत्ता है वो भी कहीं न कहीं धन से ही जुड़ी हुई बात है। और तीसरा जो जीवन प्रत्याशा है उसका भी संबंध कहीं ना कहीं धन से है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा चाहिए आपको तो वो धन से जुड़ी हुई चीज है। लेकिन यहां सोचने के लिए फिर से एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या धन खुशी की गारंटी है? अब इस पर आप विचार कीजिएगा, ये फोर्थ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या जो धनी लोग हैं वास्तव में वो खुश हैं, या अगर मैं दुखी हूं, अगर मेरे पास धन आ जाए तो क्या मैं खुश हो जाऊंगा? इसके बारे में भारतीय दर्शन क्या है? इस विषय पर आप सब अपने अपने ढंग से भी सोचिएगा, और आपका अगर कोई डिस्कशन का ग्रुप है तो प्लीज उसमें भी आप इस पर विचार करें, अपने अपने विचार रखें, और इस तरीके से रखें एज इफ कि आप वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं कि धन का क्या रोल हो सकता है खुशी के लिए। फिर आप शहरी खुशी को ले सकते हैं, गांव की खुशी को ले सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों की खुशी ले सकते हैं, अशिक्षित लोगों की खुशी को ले सकते हैं, हमारे जो आदिम जाति के लोग हैं, आदिवासी और जनजाति हैं, उनमें जाइए, उनके बारे में थोड़ा सा दिमाग मिलाइए कि वो खुश रहते हैं या वो दुखी रहते हैं, और यदि वो खुश रहते हैं तो उनके पास तो उतना धन नहीं है, तो फिर कौन सी चीज़ है कि उन्हें खुश कर रही है? फिर हमारे यहाँ जो अलग तरह के आध्यात्मिक किस्म के जो लोग हैं, जो त्यागपूर्ण जीवन जीते हैं, तो वो क्या दुखी हैं? मतलब इस तरह से ढेर सारे एंगल्स में आपको बता रहा हूं कि किसी भी विषय पर कैसे सोचा जाता है। तो प्लीज आप खासकर इस विषय का इस्तेमाल सोचने के लिए कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही व्यावहारिक विषय है, हम सब इसकी कुछ न कुछ जानकारी रखते ही हैं, इसलिए मैं इस विषय पर इतने विस्तार के साथ बातें कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग को सोचने की आदत पड़ सके। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं बिजेंद्र चौहान लिमांशी कोटा राजस्थान से और रोहिताश गुर्जर जयपुर से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।